कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जेतु शासनम मंगल में मंगल करण बीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भई अर्ता दिमान करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज बदरा। रहस्यपूर्ण चिट्ठी जीवन जीने की कला शाश्वत चैतन्य परमात्मा का भान कैसे होता है उसके मंत्र हैं इसके अंदर। गुरुदेव श्री का जो आज विषय चला था वो ये चला था कि मुनिराज ज्ञानी धर्मी परिणामों को विशुद्ध करने के लिए ऐसा विचार करते हैं। कल जो विषय आया था वो बारह भावना का था और आज जो विषय आया वो नव पदार्थ सप्त तत्व इसका चिंतन करते हैं। प्रश्न हो सकता है जो स्वयं शुद्धोपयोग स्वरूप है उनको अब चिंतन की क्या आवश्यकता है? साधक की भूमिका है ना, जब तक साधक है तब तक छठे गुण स्थान में मुनिराज को ऐसा परिणाम आता है। प्रसंगवश गुरुदेव श्री ने जिन प्रतिमा की बहुत महिमा गाई, जिन प्रतिमा जिन सार की कही जिनागम माही, ऊपर कितनी भव्य प्रतिमा है, अकृत्रिम प्रतिमा का बोध होता है। ऐसा लगता है कि अकृत्रिम जिनालयों में ऐसी ही जिनबिंब होती होंगी। सच तो यह है कि जो सोनगढ़ में पहली प्रतिमा आई थी हमको तो आप ही लोग बताते हो उस विषय में, तो उससे पहले जयपुर में ऐसी प्रतिमाएं नहीं बनती थी। किसी के कान जुड़े हैं, मतलब इतनी भव्य नहीं होती थी। दूसरे शब्दों में कहें तो बिल्कुल समचतुर संस्थान जैसे सर्वज्ञ देव होते हैं वैसी प्रतिमा उस सीमंदर जिनालय के बीच की प्रतिमा है, और उसको देखकर ऐसा लगता है कि अकृत्रिम जिनालयों में ऐसी ही जिनबिंब होती है। भावना भवनाशिनी भावना भव वर्धनी, भावना से भव का नाश होता है, भावना से भव बढ़ते हैं, दिखाई तो कुछ नहीं देता। नंदीश्वर कहाँ है? दिखाई नहीं देता। पंचमेरु कहाँ है? दिखाई नहीं देता। दिखाई तो बहुत कुछ नहीं देता। मैं भी इस प्रसंग में नहीं जाता, नंदीश्वर द्वीप के विषय में ऐसा भी आता है। कल एक कथा सुनाई थी, आज भी एक छोटी सी सुना देते हैं फिर विषय लेते हैं। वो भी सच्ची घटना है। यही नंदीश्वर पर्वत चल रहा था, वो विदेह क्षेत्र की घटना थी, ये भरत क्षेत्र की घटना है। अष्टानिका पर्वत चल रहा था, दो दंपत्ति जिनेन्द्र की पूजन कर रहे थे और नंदीश्वर द्वीप की पत्नी को घर पर भाव आया। बुद्धि कम थी पर भावना अच्छी थी। बोली मुझे नंदीश्वर द्वीप जाना है। बोले कैसी पागल है, नंदीश्वर द्वीप कैसे लेकर जाऊंगा, सम्मेत शिखर कहो तो ले चलूं, ढाई द्वीप के बाहर तो जाना संभव नहीं है। देव कोई विद्याधर मनुष्य नहीं जा सकता। बोले नहीं, आप नहीं लेके गए तो भोजन पानी बंद, राजहट स्त्री हट और बाल हट, ब्रह्मा भी नहीं समझ सके। वो समस्या दुखी हो गई भारी। अब लेकिन भावना तो अच्छी थी। बोले नहीं लेकर गए, मैं कुछ नहीं समझती, यदि तुम मुझे नंदीश्वर द्वीप लेकर नहीं गई तो अन्न जल का त्याग, मैं तो नंदीश्वर द्वीप के दर्शन करके ही भोजन पान ग्रहण करूंगी। ऐसा क्या करें, पति भी धर्मात्मा था, उसने तुम नहीं करोगे तो हम भी नहीं करेंगे। और दोनों उपवासी, पूरा पर्व निकल गया और नौवें दिन देह छूट गया, सातवें आठवें दिन, और दोनों वैमानिक देव बनी और वहां से अंतर मुहूर्त में नंदीश्वर द्वीप पहुंच गए जाकर। बाद में वहां जो पुराने देव थे उनको ये प्रश्न हुआ कि ये नया जोड़ा तो अभी अभी आया, ये कहां से आया? देवों में भी तो नए और पुराने होते हैं, जो अभी के उपात सैया से उठे हैं और बाद के। तब उनको ये भावना भाई, उनको ये पूरा किस्सा मालूम पड़ा, भगवान सर्वज्ञ देव ने बताया। ये बातें कल्पित नहीं है, अध्यात्म जितना सत्य है करणानियोग भी उतना ही सत्य है। ये बात अलग है कि करणानियोग परीक्षा प्रधानी नहीं है, वो आज्ञा से माना जाता है, और जिनेश्वर की आज्ञा में क्या और क्यों करे तो समझना मिथ्या दृष्टि है। अभी विषय चलना था रहस्यपूर्ण चिट्ठी, जे जीवे प्रसन्न चित्त थी आ चैतन्य स्वरूप आत्मानी बातज सांबड़ी छे, ते भव्य पुरुष भविष्यमा थनारी मुक्तिनो निश्चेती पात्र थाय छे, अर्थात ते जरूर मोक्षमा जाय छे। प्रसन्नता का अर्थ श्रीमद जी ने एक जगह अर्थ किया है कि जिसको कसाय प्रसंग में मौत भासित हो और देवगुरु धर्म के प्रसंग में अनंत प्रसन्नता लगे अंदर से, घर जाए तो ऐसे लगे मौत के कुआं में जा रहे हैं और इधर आए तो ऐसा लगे कि देव शास्त्र गुरु की शरण में आ रहे हैं। उसको सुनते तो बहुत है, सुनने के बाद भी क्या अपने को आज तक देशना लब्धि नहीं हुई? कि हां नहीं हुई, देशना तो अनंत बार हुई लेकिन देशना लब्धि नहीं हुई, सत्य देशना लब्धि उस जीव को। ये जो कहा जाता है कि अभव्य को चार लब्धि हो गई, सच में उसको लब्धि कहा ही नहीं गया जिसको जिसको कर्ण लब्धि ना हो, उसको शेष चार लब्धि भी किस काम की? किसी की सगाई हो जाए और शादी ना हो तो भविष्य में वो क्या कहेगा कि हमारी सगाई हो गई थी, हमारी सगाई हो गई थी, कि वो सच्ची सगाई नहीं कहलाती। तो सत्य तो ये है, देश ना तो अनंत बार सुनी लेकिन देश ना लब्धि नहीं हुई जीव को। देश ना अनंत बार सुनी ये भी व्यवहार कथन है, प्रसन्न चित्त से नहीं सुनी। अभी अभी आपको ये सूचना मिले कि आकाश मार्ग से मुंबई के लास्ट छोर पर पहाड़ियों में दो दिगंबर मुनिराज आए चारण रिद्धिधारी, और उसी समय आपको दूसरी सूचना ये मिले आपके 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है और दोनों के मिलने का समय एक है। बताइए कहां जाओगे? ये कहना अलग है, सच बात यह है जिसने अपने मन को पहचान लिया वो जिन शासन में चढ़ने लगा। जैन शासन को समझने का सबसे बड़ा उपाय पहले अपने मन का ऑपरेशन करो। हम स्वयं अपने आप को पहचाने कि हम खड़े कहां हैं, हमको तत्व ज्ञान श्रवण में प्रसन्नता महसूस होती है नहीं होती है। अरे समाधि मरण के प्रकरण में तो ऐसा लिखा है भगवती आराधना में शिवकोटी आचार्य ने, हे भगवान मैं जानता हूं आप सर्वज्ञ हो, आप किसी को कुछ नहीं देते, आप उनको उनकी निधि बताते हैं, तथापि आप मेरे से ये कहें कि कुछ मांग ले तो प्रभु मैं मांगता हूं, क्या मांगता हूं कि जब मेरा देह छूटे तो मेरे आगे मोहियों की सेना ना हो, साधर्मियों की सेना तत्व ज्ञान करा रही हो। ऐसा लिखा, और कुछ नहीं चाहिए। तो प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न चित्त का एक दूसरा अर्थ और भी है कि इसमें सर्वस्व भाषित हो। आप जानते हैं इस समय हम वो कार्य कर रहे हैं जो विधेय क्षेत्र में सीमंदर भगवान के श्रोता बैठकर वहां कर रहे हैं। बताओ उनके ज्ञान में हमारा ये सभा आ रही है नहीं आ रही है? भगवान के ज्ञान में, और उनके ज्ञान में ये भी आ रहा है या नहीं आ रहा कि यहां बैठे जीव कब मुक्ति के भागीदार बनेंगे, आ रहा है नहीं आ रहा है। ये साधारण प्रसन्नता की बात है क्या? अनंत प्रसन्नता, पूरा विश्व राग का ढेर लगे इसके आगे, तत्व ज्ञान और आत्मा के आगे। इतनी बहन श्री ने एक वाक्य बोला है अपना स्वानुभूति दर्शन के अंदर, और टोडरमल जी ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अधिकार में ये बात कही है। मैं दोनों प्रमाण बता रहा हूं आपको। किसी को आत्मा का निर्णय भी हो जाए कि मैं शुद्धात्मा हूं तो भी जरूरी नहीं उसको अनुभूति हो जाए, क्योंकि निर्णय होने के बाद भी यदि उस शुद्धात्म तत्व की महिमा नहीं आती है, दो चीज है, निर्णय प्लस महिमा बराबर अनुभूति। क्या बोला? मन मैं कौन हूं इसका निर्णय, तो अकेला सूखा निर्णय नहीं, जिस शुद्धात्म तत्व का निर्णय किया कि मैं शुद्धात्म तत्व हूं, उसकी महिमा इतनी आए, उसकी महिमा इतनी आए कि विश्व उसके आगे राग का ढेर लगे, फीका लगे, इंद्रों का वैभव फीका लगे, ऐसा वो महिमा के आवेग में जो पर्याय स्वयं ज्ञायक की महिमा लाती है, वो पर्याय स्वयं पर से स्खलित होती हुई स्वरूप में समा जाती है, उसका नाम अनुभूति है। ऐसे तुम बहुत बार बोलते हैं मैं शुद्धात्मा हूं, बोलने की कोई कीमत नहीं है। ऐसे भी जीव दुनिया में हजारों हुए हैं जिन्होंने एक भी बार आत्मा नहीं बोला और मोक्ष चले गए। बोलने की क्या कीमत है? हमसे अच्छा टेप बोल सकता है, हमसे अच्छा बालक बोल सकता है, बोलने की क्या कीमत है? मुख केवली होते हैं, मुख केवली बहुत सारे, और बिना बोले बिना उपदेश दिए निर्वाण चले जाते हैं, बोलने की क्या कीमत है? बोलना तो एक नियोग है, कदाचित बोल दे व्यक्ति, कदाचित ना बोले, विषय बहुत है। भाई श्री तमे जे प्रश्नो लख्या तेना उत्तर मारी बुद्धि अनुसार कईक लखू छू ते जान सो। क्या कहते हैं टोडरमल जी जैसे विद्वान, उन्होंने ये नहीं कहा आपने जो प्रश्न लिखा उसका मैं उत्तर देता हूं, अंतर है, अपनी बुद्धि अनुसार कुछ उत्तर देता हूं। कमाल कर दिया, ऐसे महान विद्वान के चित्त में इतनी विनम्रता, इतनी विनम्रता जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ध्यान देना, यदि विनम्रता नहीं है व्यक्ति में, ऐसा लिखा कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में भाई जी कि गणधर तीर्थंकर के सामने अपने को तृण तुल्य पामर मानते हैं। गणधर अपने को तृण तुल्य पामर, अरे मैं तो तृण के समान हूं, कहां छाई ज्ञान वाले और कहां छयोपशम ज्ञान वाले। यदि छयोपशम ज्ञान की महिमा आ जाए व्यक्ति को, सुनना ध्यान पूर्वक, तो वो पर समय है, मिथ्या दृष्टि है। दूसरी गाथा में मैं संजय कुमार हूं, मैं बोल रहा हूं, ये तो स्थूल पर समय है, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मुझे थोड़ा स्वभाव हो गया है, ये भी स्थूल पर समय है, मुझे शुद्ध होना है, मुझे सम्यक दृष्टि होना है, ये भी पर समय है, और मैं ज्ञानी हूं, ये भी पर समय है। आपको की बात समझ में नहीं आई, मुझे सम्यक दृष्टि होना है, मुझे पर्याय सुधारना है, मैं क्रोधी हूं, ये पर समय है, ये तो समझ में आता है, लेकिन मैं ज्ञानी हूं ये पर समय कैसे हो गया, ज्ञान तो मेरा स्वभाव है। अरे भैया प्रश्न समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बोलो। तो ज्ञानी उसने त्रिकाल द्रव्य को देखकर ज्ञानी नहीं कहा, बल्कि क्षणिक क्षयोपशम ज्ञान को देखकर ज्ञानी कहा, इसलिए उसने क्षणिक पर्याय से अपना मूल्यांकन किया, इसलिए ज्ञानी कहते हुए भी पर समय है। वो ज्ञानी बोल रहा है मैं ज्ञानी हूं, लेकिन फीलिंग किसकी कर रहा है? क्षणिक पर्याय की। तो टोडरमल जी की विनम्रता, अद्भुत विनम्रता। अने अध्यात्म आगमनो चर्चा गर्वित पत्र तो शीघ्र शीघ्र आप्या कर सो। क्या कहते हैं? दो शब्द हैं दो दो लाइन में बताता चल रहा हूं मैं। मुझे ये भी लोभ है कि विषय का मूल विषय जरूर हो जाए। एक आगम और एक अध्यात्म। आगम किसको कहते हैं और अध्यात्म किसको कहते हैं? एक लाइन में मूल आगम को कहते हैं, फल अध्यात्म को कहते हैं। क्या बोला? आप मिलकर रिपीट करेंगे बात को? मूल आगम है, फल अध्यात्म है। नींव आगम है, फल उसका अध्यात्म है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी साधक से यह पूछा जाए कि जीव कितने हैं, तो जब वो शुद्धोपयोग में नहीं है अथवा आगम का अध्ययन कर रहा है, या उससे छह द्रव्य की प्ररूपणा चल रही है, तो वो ये उत्तर देगा कि जीव अनंत हैं। और जिस समय वो उपयोग को अंदर समाने की कोशिश कर रहा है या स्वरूप में समाने वाला है, शुद्धात्मा का जोर है, उससे पूछा जाए कि जीव कितने हैं, तो क्या उत्तर देगा? एक है, और वो भी मैं हूं। पतिव्रता स्त्री से पूछा जाए जगत में पति कितने हैं, वो क्या उत्तर देगी? बाकी सब जानवर हैं क्या? नहीं, जानवर नहीं है, लेकिन वो जानवर समझे तो ही अच्छा है। अरे समझ में आया नहीं आया? सच कह रहे हैं आप? कह रहे हो एक विनोबा भावे हुए हैं, विनोबा भावे। कमल जी थोड़ा आगे आ जाओ, कमल जी आगे आ जाइए, थोड़ा युवा वर्ग आगे आ जाए थोड़ा सा। क्या नाम है? साकेत भाई, आगे आओ, आगे आओ। ये सब युवा वर्ग ही भविष्य के नेता हैं, सबको युवा वर्ग समझेंगे तत्व ज्ञान को तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो समझता हूं उस देश का सौभाग्य है और उस नगर का सौभाग्य है कि जहां पर अष्टानिका पर्व में, कम से कम पर्व में, अपने जो स्वाध्याय वीतराग भवन है वो हाउसफुल जाए और जो सिनेमा हॉल है वो फ्लॉप चले जाए, जिससे लोगों को ये लगे कि ये विषय कसाय छोड़ने जैसी चीज है। बात किसकी चल रही थी? अध्यात्म और आगम की। तो अध्यात्म एक ही द्रव्य बताता है, वो मैं हूं। अध्यात्म एक ही तत्व बताता है, वो मैं हूं। जैसे वो बहन श्री का एक बोल है कि बालक अपनी मां से बिछड़ गया, तो वो कहता है कि तेरे पिता कौन? मां। मां हर चीज का उत्तर, मां। इसलिए ज्ञानी का हर उत्तर क्या है? आत्मा, और कुछ नहीं। इसका नाम है अध्यात्म। अध्यात्म प्रयोजन साधता है, आगम वस्तु का विश्लेषण करता है। बिना अध्यात्म के आगम निष्फल है। फिर से सुनना, बिना अध्यात्म के आगम निष्फल है और बिना आगम के अध्यात्म कल्पना है। दोनों बात फिर से सुनना। फरीदी क्या बोला? बिना अध्यात्म के आगम निष्फल है। छह द्रव्य सात तत्व पूर्व में नहीं पढ़े क्या हमने? बहुत पढ़े हैं। द्रव्य लिंगिनी नहीं पढ़े क्या? लेकिन अध्यात्म की साधना नहीं हुई। और बिना आगम के अध्यात्म कल्पना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को आगम का अध्ययन नहीं है और उसे ये नहीं पता जीव क्या है, तत्व क्या है, द्रव्य क्या है। कई लोग अभी भी, कई लोग पूरे देश में ऐसा मचा हुआ है, हम सब जगह जाते हैं, राग को पुद्गल का कहा। किसका कहा? पुद्गल का कहा। तो ये राग को पुद्गल का कहा, ये आगम व्याख्या है या अध्यात्म व्याख्या है? क्योंकि राग स्पर्श गंध वर्ण जैसे पुद्गल में होते हैं वैसे तो नहीं होते। राग पुद्गल का, बल्कि राग पुद्गल का, राग आत्मा का, राग कर्म का, न राग आत्मा का न राग पुद्गल का, ऐसी चार व्याख्याएं मिलती हैं, अलग 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 अलग। जहां राग को आत्मा का कहा जाए, इसका अर्थ है परने नहीं कराया। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो। और जहां ये कहा जाए कि राग पुद्गल का, उसका अर्थ है कि राग मेरा स्वभाव नहीं है। जब जब राग होता है तब तब पुद्गल कर्म का उदय होता है, इसलिए राग में पुद्गल व्यापक है, आत्मा व्यापक नहीं है। रक्त में फोड़ा हो गया, गंदा फोड़ा हो गया, तो उस फोड़ा का कर्ता रक्त है या गंदगी है? अरे बोलो, गंदगी है, रक्त तो नहीं हो सकता, शुद्ध रक्त कैसे हो सकता है? इसलिए राग पुद्गल का। और तीसरी व्याख्या और मिलती है, वो क्या मिलती है कि न राग आत्मा का न राग पुद्गल का, दोनों अकेले राग करके दिखा दे, अकेली शुद्ध आत्मा राग करके दिखा दे और अकेला पुद्गल राग करके दिखा दे। फिर ये कहा चौथी व्याख्या में कि आत्मा जब पुद्गल का लक्ष्य करता है तब एक विजातीय तत्व खड़ा होता है ऐसा। और एक व्याख्या हो रही गजब की, वो द्रव्य दृष्टि प्रकाश में सौगानी जी साहिब के बोल में, उनसे पूछा गया राग किसका, तो कहते गंदी चीज का एड्रेस नहीं पूछते पत्र में है, बोले तुझे राग का रस क्यों है? जैसे शरीर से मल निकलता है और मल कहीं बहकर चला जाए तो दुनिया में कोई बेवकूफ ऐसा है कि उस मल को खोजने जाए? मैं तो इतना जानता हूं कि राग मेरा नहीं है। पर संपदा के विषय में कितना जानना अनिवार्य है, जल्दी बोलो। देखो गुरुदेव की कोर्ट में एक प्रश्न गया था कि सोगानी अपने श्रीमद जी के अनुयायी श्रीमद जी को केवल ज्ञानी मानते हैं, और एक जगह खुद लिखा भी है श्रीमद जी ने कि ज्ञानी को केवल ज्ञान हो जाता है। तो गुरुदेव ने कहा कि सत्यवाद है, कैसे हो जाता है अभी सुनो। अभी यहां जितने बैठे हैं ना, सबको एक सेकंड में केवल ज्ञान हो जाए, केवल ज्ञान का अंश हो गया माने केवल ज्ञान की जाति पकड़ में आ गई। जैसे ज्ञानी को ये भान हुआ कि मैं शुद्धात्मा हूं तो उसने स्व को जान लिया, चलो करेक्ट। अब आगे पूरा विश्व तो अनंत पड़ा है, उसके विषय में तो ज्ञानी भी नहीं जानता कि पूरे विश्व के विषय में ज्ञानी इतना जानता है कि ये मेरा नहीं है। अरे समझ में आया नहीं आया बोलो। एक बहुत बड़ा मोहल्ला है ये मुंबई में, और आप अपने घर में रहते हैं तो मुंबई के सारे मकानों के विषय में आप जानते हैं नहीं जानते हैं? जल्दी बताओ, नहीं जानते हैं। क्या जानते हैं कि उनमें परमाणु भी मेरा नहीं। इतना ही ज्ञान ज्ञानी के लिए काफी है, इतना ही पर्याप्त है। बट इसलिए भेद ज्ञान की कीमत है, विशेष ज्ञान की कीमत नहीं है। एक डॉक्टर शरीर के विषय में सब कुछ जानता है कि इसमें इतनी हड्डी है, इतनी नसें हैं, किडनी है, रक्त है। और एक ज्ञानी से पूछा गया कि तुम शरीर के विषय में कुछ जानते हो नहीं जानते? क्या जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसमें परमाणु भी मेरा नहीं। तो दोनों में से ज्ञान सम्यक किसका है, जल्दी बोलो, ज्ञान सम्यक किसका है? एक जानकार है और एक ज्ञानी है, दोनों में अंतर है। एक नॉलेज का भंडार है जिसका माथा फटा जा रहा है, और एक ज्ञान है वो चैतन्य रस का सेवन करता है। ये कला समझ में आ जाए ना तो व्यक्ति की सारी तृष्णा नष्ट हो जाए। तीर्थों पर तो हम अनंत बार गए, लेकिन एक बार अपने घर को तीर्थ बना लो, पर को जानने की तृष्णा नष्ट हो जाए, पर में भ्रमण करने की तृष्णा नष्ट हो जाए, उस जीव को अपने अंदर ही सर्वस्व नजर आए, इसका नाम है अध्यात्म। अपने अंदर सर्वस्व नजर आए, इसलिए टोडरमल जी ने कहा अध्यात्म आगमनो चर्चा गर्वित पत्र तो शीघ्र शीघ्र आप्या कर सो, शीघ्र शीघ्र दो। मेलाप तो कदी थबो हसे त्यारे धसे, मिलना तो जब होगा तब होगा। पहले मिलना नहीं होता था, आदमी कब मिलेगा किससे कुछ कह नहीं सकते थे, क्यों? क्योंकि बहुत दूर दूर लोग रहते थे। टोडरमल जी कहां, और पत्र का उत्तर दिया जा रहा है पाकिस्तान मुल्तान नगर को। मिलना तो जब होगा तब होगा। मिलाप की कोई गारंटी नहीं है। जो लोग सोनगढ़ जाते थे उस समय तो इतने साधन नहीं थे, तो बड़ी तैयारियों के साथ जाते थे। कोई वो चलते थे तार, पहले तार चलती थी, फोन भी बहुत बड़े लोगों के पास होते थे, सामान्य तो फोन होती नहीं थी, एसटीडी होती थी, लाइन लगानी पड़ती थी बात करने के लिए। मिलना तो जब होगा तब होगा। आगे का वाक्य सुनना, अनि निरंतर स्वरूपानुभव अभ्यास राख सोजी श्री रस्तु। इस वाक्य में गजब किया है टूडरमल जी ने, गजब, कि और किसी का अभ्यास मत करना, मात्र स्वरूप अनुभव का अभ्यास रखना निरंतर निरंतर। सच कह रहे हैं, खाते पीते चलते बैठते उठते सारी जीवन को आग में डालने जैसा है और किसी कार्य में फंसना। केवल निरंतर स्वरूप अनुभव का अभ्यास रखो, स्वरूप अनुभव का। अरे जिसमें हम अपना उपयोग जला रहे हैं दिन रात, भैया सुनाम सोमिल जी आप तो कक्षा लेते ना, जिसमें हम दिन रात अपना उपयोग जलाते हैं कि धन एकत्रित कैसे हो, बाहर की सारी व्यक्ति, दुनिया का हर प्राणी, हम आपको सच कह रहे हैं, हर व्यक्ति इस कोशिश में है कि मेरा थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाए, मेरा थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाए। बाहर की आपाधापी में जीवन निकल रहा है उसका, जबकि वो व्यवस्था कर्मोदय करता है। कौन करता है? वो व्यवस्था कर्मोदय करता है। अभी करीब 15 दिन पहले मेरे को आईएएस जैन साहब हमारी मुंबई में, वो आएंगे परसों या कल आएंगे, अभी बाहर गए हैं, तो मैं यहां आया हुआ था, वो आपके शिविर में वहां पर लोनावाला, दो आप आए थे उससे पहले चला गया फिर बाद में आया, तो उनकी कोई जान पहचान होगी। वो मेरे को बोले पंडित जी आपको एक चीज दिखा के लाते हैं, वो एम बेली सिटी कौन सी है वो, हाँ वहां लेकर गए मुझे बाद में। बोले दो कितनी सुंदर है, मैंने हाँ सुंदर तो है, अच्छा है। बाद में मालूम पड़ा इसका मालिक जेल में पड़ा है। अब मुझे आप बताओ कि वो पुण्य फल भोग रहा है या पाप फल भोग रहा है। ऐसा भी हो सकता है, सुनो सुनो सुनो, संयोग पुण्य के हो और फल पाप का भोग रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि संयोग पाप के हो और फल पुण्य का भोग रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। कैसे? कि जीवनधर स्वामी शमशान में जन्मे, जीवनधर स्वामी शमशान में जन्म हुआ है जीवनधर स्वामी का, और उसी भव से मोक्ष गए। गुरुदेव श्री एक उदाहरण देते थे, वज्रबाहु का नाम सुना होगा आपने, अपनी पत्नी में अत्यंत आसक्त, शादी हुई नई नई, भैया पत्नी का भाई उदय सुंदर और पत्नी का नाम था उनकी मनोदया, वो वहां पर उसको लेने के लिए आई। आते ना भाई आता है बहन के घर शादी के बाद, गोना बोलते हमारे यहां हिंदी में, वो राजकुमार वज्रबाहु छोड़ने को तैयार नहीं, वो कहते कि हम तो इनके बिना एक मिनट नहीं रह सकते, तो आप भी साथ चलो, तो रथ में साथ जाते हैं। वो बहुत बेशरम कहलाते हैं कि जिनका भाई पत्नी को लेने आए और वो साथ जाए। वो जाते हैं और रास्ते में एक 16 वर्ष के राजकुमार नग्न दिगंबर पर्वत के ऊपर आत्मध्यान कर रहे थे। उस वज्रबाहु ने उनको देखा, देखते ही रथ को रोका, इनके मन में न जाने क्या आया, और उनके पास गए, जाकर उनसे बोले हे कुमार भरी जवानी में क्या कर रहे हो। मुनिराज को उनकी होनहार अच्छी लगी और उन्होंने एक उत्तर दिया धीरे से, जो अनंत काल में नहीं किया वो कर रहा हूं। क्या उत्तर दिया? जो अनंत काल में नहीं किया वो कर रहा हूं। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि अनंत काल में क्या नहीं किया? कि आत्मा का अनुभव नहीं किया वो कर रहा हूं। इतनी देर में तो वस्त्र उतार दिए, केस लॉन्च कर दिए और वहीं मुनिराज के साथ आत्म अनुभव करने बैठ गए। बाद में तो मनोदया ने, उदय सुंदर ने, सबने दीक्षा ले ली उसमें। हम सब कुछ कर चुके हैं अनंत बार, मेरे समझ में नहीं आता हमारे मन में द्वैत क्यों चल रहा है। अब सत्य पा लिया तो भी हम क्यों किसकी आशा है हमको, हम क्यों उलझे हैं, हम तृष्णा का मार्ग क्यों नहीं छोड़ते हैं, हम बार बार पाप के धंधों में क्यों उलझते हैं, यहां जाने के बाद हमारी बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो जाती है निकल कर यहां से। टोडरमल जी जैसे व्यक्ति स्वयं आजीविका करते थे, स्वयं आजीविका, सेठ ने पगार बढ़ा दी उनकी और वह हाथ जोड़कर बोले सेठ जी से कि मेरी पगार मत बढ़ाओ, मेरा समय कम कर दो, दुकान पे आने का मुझे आत्मा का अनुभव करना है, मुझे स्वरूप का अभ्यास करना है, मुझे पगार मत बढ़ाओ आप, ऐसा ये साधारण बात नहीं है। ये केवल सारे काम छोड़ो, आज प्रतिज्ञा लेके जाओ अष्टानिका पर्व में सब मिलके, ये तो भाषा थर्ड पर्सन होती है, मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा, ना मैं उपदेश देने के योग्य हूं, ये तो गुरुदेव की गद्दी है, गणधरों की गद्दी है, मुनिराजों की गद्दी है, हम तो बांचना कर रहे हैं यहां पर मात्र। सब एक क्षण में बह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। हाँ, उत्तराखंड में वो आया था 2 साल पहले और उससे 2 दिन पहले वहीं था मैं, फिर आया, ऐसे बड़े बड़े होटल पानी में बह गए, मालूम नहीं पड़ा। जापान में सुनामी आई थी, माचिस की तीली की तरह लाखों लोग बह गए, ऐसे बह गए मालूम नहीं पड़ा। ये सब मिट्टी है, इसको पुण्य कहती है क्या? दीवार को पुण्य कहती है क्या? वस्त्रों को पुण्य कहती है क्या? किसको पुण्य कहती है? हमारे दिमाग में घुसा क्या है? अरे अंदर बेचैनी हो और बाहर किसी पे 2 क्विंटल सोना लदा हो और अंदर बेचैनी हो, वो पुण्य है या पाप है? सत्य तो ये है, अंदर सुकून है, शांति है तो पुण्य है, और अंदर बेचैनी है तो पाप का उदय है। तो सच्चा चैन तो अध्यात्म में है, स्वरूप की साधना में है। तो स्वरूप अनुभव का अभ्यास राक्षसो जी श्री रस्तु, ये मंगलकारी वचन कहलाता है, आपका कल्याण हो। श्री रस्तु माने आपका कल्याण हो। आगे अब पत्र शुरू होता है, ऐसा पत्र है, ऐसा पत्र है कि बुद्धि के परचक्के उड़ जाएं। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इतनी गहरी बात इस पत्र के अंदर है। एक एक पैरा में एक एक शास्त्र है, एक एक पैरा की चर्चा करें तो एक एक महीना लग जाए, इतना जबरदस्त विषय है। हवे स्वानुभव दशा विषय प्रत्यक्ष परोक्षादिक प्रश्नों ना उत्तर स्वबुद्धि अनुसार लखू छू। इससे एक बात भाषित होती है कि टोडरमल जी स्वयं स्वानुभव करते थे, क्योंकि ये उत्तर हर कोई लिख नहीं सकता, कोई उत्तर लिख नहीं सकता। भैया थोड़े युवा वर्ग पीछे मत बैठा करो और ऐसे मत बैठो, उसका बात चर्चा चल रही है, स्वानुभव की चर्चा चल रही है। वक्ता हो सूर्य जैसा और श्रोता हो कमल जैसा, हम यहां पर केवल ज्ञान लेने आए हैं, वो चेहरे पर उदासी हो तो क्या मतलब है? इसका मतलब कोई आशा लेकर बैठे हैं यहां पर। इसलिए हमारे बाबूजी बोलते थे, युगल जी जो अपना संसार उजाड़ने को तैयार हो वो जिनवाणी सुने। 72 फुट का कलेजा चाहिए, 72 फुट का कलेजा। अब ऐसी वो गुरुदेव मिलकर वो जमाना गया अब कि कोई भगवान से मांग करे, अब तो गुरुदेव ने ऐसे श्रोता तैयार कर दिए हैं कि जो भगवान के सामने ये कहते हैं कि प्रभु मुझे लौकिक अनुकूलता नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कम पद नहीं चाहिए कोई दूसरा। और अब कोई ये पंचेंद्री विषयों को कौन मांगेगा भगवान से, पागल है क्या वो? ऐसा है, 2 चीज है, एक है प्रतीति और एक है स्वानुभव। ये वाक्य आपको समझना पड़ेगा तब ये पूरा लेटर समझ में आएगा। स्वानुभव के और भी पर्यायवाची शब्द हैं, स्वानुभव कहो, शुद्धोपयोग कहो, ध्यान कहो और निर्विकल्प दशा कहो, एक ही बात है। फिर से क्या कहा? स्वानुभव दशा कहो, शुद्धोपयोग कहो, ध्यान दशा कहो, निर्विकल्प दशा कहो, एक ही बात है। फिर से बोल दूं एक बात, स्वानुभव दशा कहो, शुद्धोपयोग कहो, ध्यान कहो, निर्विकल्प दशा कहो, एक ही बात है। एक ही बात है। ज्ञानी की दो तरह की परिणति होती है। ज्ञानी जो स्वरूप में बैठते हैं, देखो ये तो भाषा है, स्वरूप में बैठते क्या है, ज्ञान स्वरूप को विषय बनाता है, ज्ञान स्वरूप को विषय बनाता है, और उस समय जो आनंद आता है वो इंद्र नाग नरेंद्र व अहिमेंद्र के नाही कहो, इंद्र नाग नरेंद्र के भी वो आनंद वैसा नहीं होता। और जिस समय वो ज्ञानी स्वरूप से बाहर आ जाते हैं, वो दशा भी ज्ञान दशा है, लेकिन उसको स्वानुभव दशा नहीं कहते, उसको सविकल्प दशा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सविकल्प कहो, प्रतीति निरंतर रहती है। इसलिए सम्यक दर्शन का लक्षण शुद्धोपयोग नहीं है, सम्यक दर्शन का लक्षण प्रतीति है। फिर से कितने लोगों को पकड़ में आ रहा है, कितनों के नहीं आ रहा है, क्या कहा, कठिन लग रहा है क्या? फिर से साकेत भैया समझ में आ रहा है, डेली स्वाध्याय करते हो, हमारे सब दादर के बंधु हैं ये, और डेली डेली प्रतिदिन 30-40 युवा लड़के प्रतिदिन समय सार का गुरुदेव का डेली अध्ययन करते हैं, बहुत बड़ा शुभ लक्षण है बहुत। और ये सम्राट चंद्रगुप्त के स्वप्नों में आया है कि इस कली काल में युवा वर्ग ही जैन धर्म के रथ को आगे खींचेंगे, ऐसा सम्राट चंद्रगुप्त की उसमें आया है स्वप्नों के अंदर। बात क्या चल रही है, ज्ञानी जब बाहर आ गया तो उस समय को वो अज्ञानी हो जाएगा क्या, नहीं, कहलाएगा तो ज्ञानी, लेकिन वो शुद्धोपयोग दशा नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन का लक्षण शुद्धोपयोग नहीं कहा, सम्यक दर्शन का लक्षण प्रतीति कहा। प्रतीति 2400 घंटे चलती है और शुद्धोपयोग कभी कभी होता है, कहो तो दिन में कई बार हो जाए, कहो तो महीना नहीं हो। अरे ज्ञानियों की लक्षण देखो गजब के, भरत जी 6 खंड जीतने के लिए जाते हैं और इधर नगर के बाहर अपनी सेना का कैंप लगता है, सेना तैयारी कर रही है दूसरे नगर पे जाने के लिए, भरत जी कहते हैं हम अभी आते हैं, ये बैठ के शुद्ध उपयोग कर रहे हैं, स्वरूप में बैठ के आत्म ध्यान कर रहे हैं। ऐसा तक लिखा है, आपको आश्चर्य लगेगा, गद्दी से बोलने में थोड़ा सा सही नहीं लगे, कि ज्ञानी भोग से पूर्व और भोग के पश्चात भी शुद्ध उपयोग कर ले, ऐसा स्वरूप में बैठ गए। क्यों, क्योंकि अंदर में तो सच में उनके बहती ज्ञान धारा है, ज्ञान धारा, साधारण बात नहीं है ये। ये टोडरमल जी ने रहस्य खोला है आगे, ज्ञानी की परिणति कैसे कैसे होती है। आगे चलते हैं अब अपन, तेमा प्रथमज स्वानुभवनु स्वरूप जानवा अर्थे लखूच। स्वानुभव का अब जो पहला पहरा आएगा इस लेटर का, इसमें निमित्त का ज्ञान कराया है, इसको थोड़ा अपन फास्ट लेंगे। जीव नामनो चेतन पदार्थ अनादि काल थी मिथ्या दृष्टि छे, पर्यायनी बात छे, ये पर्याय की बात है, अनादि किसी ने इसको मिथ्या दृष्टि किया नहीं है। और ये भी बड़ा विचित्र है, किसी एक सिंगल व्यक्ति को मिथ्या दृष्टि कहो तो वो बुरा मानेगा, और पूरी सभा को मिलकर कहो तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। दुनिया में सबसे बड़ी गाली है मिथ्या दृष्टि, और मिथ्या दृष्टि से भी बड़ी गाली है अभव्य, अभव्य, हाँ अभव्य, थोड़ा हिंदी और गुजराती का अंतर पड़ जाता है, ये कहना गाली है, गाली, मिथ्या दृष्टि गाली, बहुत बड़ी गाली है ये। दुनिया में किसी ने किसी को मिथ्या दृष्टि कह दिया माने बहुत बड़ी गाली है ये, इससे बड़ी गाली और कौन सी होगी, ऐसा है। पर अनादि से मिथ्या दृष्टि है, त्या स्वपर्णा यथार्थ रूपी विपरीत श्रद्धानु नाम मिथ्यात्व छे। स्व और पर के विषय में उसका विपरीत कॉन्सेप्ट है, जैन दर्शन समझ का नाम है, समझ, सत्य समझ हुई। जैसे बताओ ये क्या है, जल्दी बोलो, एक कह रहे कपड़ा, एक कह रहे रूमाल, बहुत के कह रहे पुद्गल, ऐसा है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा दुनिया में कितने मूर्ख हैं, अब वो बीरबल क्या उत्तर दे, और वो भी राजा को जिसके पास पलता हो उसको वो क्या उत्तर देगा। बहने थोड़ा आगे सरक जाओ, अब दरवाजे पर बैठी है, थोड़ा सा आगे आगे सरकी ऐसा। फिर से सुनना ध्यान पूर्वक। तो उन्होंने बोला महाराज कैसे कहे कि आप हो मूर्ख, तो कोई भी बात सत्य कहनी हो विनम्रता से कह दो। तो उस बीरबल ने संस्कृत में बोला हाथ जोड़कर अकबर के आगे कि महाराज आप प्रश्न फिर से दोहराइए, आप प्रश्न फिर से रिपीट कीजिए कि दुनिया में कितने मूर्ख हैं और पहला मूर्ख कौन है। तो वो हाथ जोड़कर उत्तर देता है प्रथमम तू राजा द्वितीयम तू प्रजा। अब वो गाली तो दी नहीं उसने, पहला राजा दूसरी प्रजा, महाराज प्रजा तो दूसरी होती है। राजा समझ गया। ये एग्जाम्पल मैं मेरी तरफ से नहीं दे रहा, एक बहुत बड़ा कवि सोनगढ़ पहुंचा था जिनका नाम था नीलम सेठी, और वो गुरुदेव के आगे उन्होंने ये कविता में काव्य सुनाया जो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं। बोले आप कैसी बातें कर रहे हो। बोले आपने यदि 7 दिन में सिद्ध नहीं किया कि मैं धरती का पहला मूर्ख हूं तो तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। पहले राजा सन की होते थे, वो एक कपड़ा खरीद के लाया 5 मीटर और धोती बनाकर पहनकर आ गया। सम्राट बताओ ये क्या चीज है। बोले धोती है। दूसरे दिन उसको ऊपर पहनकर आ गया। बोले ये क्या चीज है। बोले दुपट्टा है। लो अब वो दुपट्टा बन गया। तीसरे दिन उसको कमर पर बांध लिया। ये क्या चीज है। बोले फेटा है। चौथे दिन उसको सर पे बांध लिया। ये क्या चीज है कि सहरा है, सहरा है स्वाफा। पांचवे दिन उसमें बल लगा लिए। ये क्या चीज है कोड़ा है, हंटर कोड़ा है ये। छठे दिन उसको स्त्री किया और उसमें पायजामा सिला दिया कि ये क्या चीज है कि पायजामा है। सातवें दिन उसके नीचे का भाग अलग कर दिया कि ये क्या चीज है कि अधो वस्त्र है। और आठवें दिन उसका कत्तर कत्तर कर दिया। ये क्या चीज है कि धरती पहुंचने का पोछा है। हिंदुस्तान है या मिसयूज कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा इसीलिए हमने ये कहा कि तुम धरती के पहले मूर्ख हो, क्योंकि तुम्हारे फूटे मुंह से एक भी दिन ये नहीं निकला कि ये कपड़ा है। मेरा प्रश्न है कि रूमाल है या कपड़ा है। नहीं क्यों, क्योंकि रूमाल है तो सही, लेकिन रूमाल वो शाश्वत नहीं है। रूमाल शाश्वत नहीं है। अज्ञानी कोई भी वस्तु को देखता है तो उसमें 3 विपरीतता करता है, जिसको टोटल मलची ने कहा कारण विपरीय, स्वरूप विपरीय, भेदा भेद विपरीय। मैं इन रूमाल पर ही घटाकर बता रहा हूं वो कैसे हर वस्तु को जानकर उसमें मिथ्यात्व का सेवन करता है। तो सर पहला मिथ्यात्व तो ये जैसे रूमाल नजर आया, स्व और पर में कैसे मिथ्या दृष्टि होता है अज्ञानी, तो ये इसको वो रूमाल समझकर एक द्रव्य समझता है, जबकि ये अनंत परमाणुओं का मिला अनंत द्रव्य है। तो पहला कहलाया, पहला मिथ्यात्व तो ये होगा। इसका कर्ता दर्जी को मानता है, तो कारण विपरीय हुआ। पहला स्वरूप विपरीय, दूसरा कारण विपरीय, और है मुझसे भिन्न इसे अपना मानता है। ये भेदा भेद विपरीय, ऐसे कारण विपरीय, स्वरूप विपरीय, भेदा भेद विपरीय। आप जब यहां से निकलो तो आप स्वयं अपनी दृष्टि पहचानो, देखो बहुत मजा आएगा। आप अपने घर में प्रयोग करना, हम जिस भी चीज को देख रहे हैं उसमें कुछ मिश्रित होकर देखते हैं। ये बिल्डिंग बहुत अच्छी है, इसको मिस्त्री ने बनाया, ये एक दीवार है। ज्ञानी हर पदार्थ को जानते हुए उनमें ये 3 गलतियां नहीं करता। कौन कौन सी, कारण विपरीय, स्वरूप विपरीय, भेदा भेद विपरीय। इसलिए ज्ञानी जो जानता है उसका जानना सम्यक ज्ञान कहलाता है, और अज्ञानी जो भी जानता है उसका जानना मिथ्या ज्ञान कहलाता है। मेरे भैया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो। सारे दुखों का मूल कारण ही मिथ्यात्व है। सम्यक दर्शन की खोज भी गुरुदेव ने की, और संसार में दुखी कौन है इस काल में, ये चर्चा भी मिथ्यात्व भी गुरुदेव श्री ने बताया। क्योंकि जब तक मिथ्यात्व का स्वरूप नहीं पता हो तब तक सम्यक दर्शन का स्वरूप भी नहीं पता पड़ेगा। ये भी विचित्र है कि जिस दिन जिस घर से मोक्ष मार्ग खुला उसी घर से संसार मार्ग भी खुला। बताओ कौन सा? आदिनाथ का। ये दोनों मार्ग एक साथ सदा चलते आए हैं। दुखी जीव किसके कारण है? दुखी मिथ्यात्व। मैं इसका एक छोटा सा विषय लेना चाह रहा हूं इसी प्रसंग में। जैसे एक व्यक्ति प्यासा है तो हम पूछे भी क्यों दुखी है? आप कहोगे पानी के कारण दुखी है, पानी नहीं मिला। लेकिन भगवान कहते नहीं, पानी के अभाव से वो दुखी नहीं है, पानी की इच्छा से दुखी है। अरे समझ में आया नहीं आया? बोलो, नींद आ रही है क्या आपको? या तुम जागने आए हैं? जागने, और सोने का समय नहीं है, अनंत काल जागना है, सोने का समय नहीं है। ये अज्ञानी समझता है कि पानी के अभाव से दुखी है, और ज्ञानी समझता है पानी की इच्छा से दुखी है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है या नहीं है? इसलिए अज्ञानी जिस जिस पदार्थ को जान रहा है, अभी यहां से मोही लोग अपने अपने घरों में जाएंगे तो इस गर्दन के ऊपर उल्टा घड़ा रखा हुआ है, ये उल्टा घड़ा है। इसमें जो विचार चलते हैं हमारे, क्या वो मेरा घर है, वो बीवी है, बच्चे हैं। तो स्टोप देश में लिखा मोही जन मिट्टी में रहते हुए मिट्टी की ममता करके मिट्टी का संसार बसाते हैं, उनको सत्य दर्शन कभी समझ में नहीं आता। अरे एक बार थिंकिंग सही हो जाए तो आकाश में उड़े, आकाश में। साइकोलॉजिकल एक ऐसा विषय चलता है आज, हर आदमी टेंशन में है, टेंशन में, डिप्रेशन में है, माथा प्रसन्न नहीं रहता एकदम, व्यक्ति दुखी है। उसके पीछे भी कारण क्या है? मिथ्यात्व है। क्योंकि वो समझ रहा है ये इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, बाहर भाग रहा है, बाहर भाग रहा है। आप जानते हैं भैया साकेत, नींद की गोली किस देश में सर्वाधिक बिकती है? यूके और यूएसए में। कमाल हो गया, जहां सुख के साधन सर्वाधिक हैं उनको सोने के लिए नींद की गोली लेनी पड़ती है। इससे मतलब लगता है कि संयोग से सुख का संबंध नहीं है, सुख का संबंध अंदर से है। खेमचंद भाई का एक बोल है, परिणाम योग्यता के अनुसार होते हैं और संयोग भाग्य के अनुसार होते हैं, सुख दुख मोह के अनुसार होते हैं। पूरी सभा मिलकर रिपीट करे इस बात को। क्या कहा? परिणाम योग्यता के अनुसार होते हैं, संयोग भाग्य के अनुसार होते हैं और सुख दुख मोह के अनुसार होते हैं। ये जीव नहीं समझता इसका नाम क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व के कारण दुखी है। इसी को कहा यथार्थ रूपी विपरीत श्रद्धानु नाम स्वपर्णा, यथार्थ रूप थी विपरीत श्रद्धानु नाम मिथ्यात्व छे। दो मिनट बची छे बस। बणी जे काड़े कोई जीव ने दर्शन मोहन उपसम छह छह उपसम थी, स्वपर्णा यथार्थ श्रद्धान रूप तत्वार श्रद्धान थाए त्यारे ते जीव सम्यक्त्वी थाए छे। क्या कहते हैं? किसी काल में मोह के उपसम छह या छह उपसम से, फिर से सुनना, ये निमित्त का ज्ञान कराया जा रहा है। कर्म के उपसम छह या छह उपसम से सम्यक दर्शन नहीं होता। बिल्कुल नए लोग हों तो ऐसा समझ सकते हैं, थर्मामीटर बुखार कराता है या थर्मामीटर बुखार बताता है? अब कोई थर्मामीटर को देखकर ये कहे कि थर्मामीटर ने बुखार कराया है, तो कर्म विकार का ज्ञापक है या कर्म विकार का उत्पादक है? कर्म विकार का ज्ञापक है, कर्म विकार का उत्पादक हो सकता नहीं है। यदि कर्म विकार का उत्पादक हो जाए तो कर्म तो हमको कभी नजर आते नहीं, इसलिए कभी हमारा विकार नष्ट ही नहीं होगा। तीन काल में कैसे नष्ट होगा कर्म का विकार? लेकिन जब कर्म की तरफ से समझाएंगे तब ये कहा जाएगा कि जब जीव स्वरूप का श्रद्धान करता है, आत्मा की श्रद्धा होती है, उस समय मिथ्यात्म कर्म का उपशम क्षय या क्षय उपशम जरूर होता है। इसको समझना हो तो फिर वो लाइन अलग चली जाएगी कर्म की ओर, वो विषय चेंज हो जाएगा। माटे स्वपर्णा श्रद्धान मा शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक तु गर्भित छे। स्व पर के श्रद्धान में, पर का श्रद्धान कैसा होता है कि ये मैं नहीं हूं, मेरा सुख इसमें नहीं है। स्व का श्रद्धान कैसे होता है कि मैं एक त्रिकाली चैतन्य परम पदार्थ हूं और मेरा सुख मेरे में है। ये ऐसी एक ऐसी थ्योरी है, ये सच कह रहे हैं आपको, ऐसी थ्योरी है कि अनंत काल प्रसन्न रहे कमल जी, अनंत काल खिलता रहे, घर में अर्थी पड़ी रहे और ये मुस्कुराता रहे, ऐसा करके। ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ के जाए और यहां कोई सूचना दे कि आपके घर में आग लग गई है, तो पहले घर नहीं जाए, सूचना देने वाले को ये कहे कि जरा कागज और पेन दो मुझे, उस आग की लपटों की पेंटिंग बनाऊंगा मैं बैठकर। ऐसा ऐसा मन पक्का मजबूत हो जाए, क्योंकि उसे फिर घर घर नजर नहीं आएगा, उसे मिट्टी का ढेर नजर आएगा। दार्शनिक और सामान्य व्यक्ति में अंतर क्या है कि सामान्य व्यक्ति मिट्टी की चीजों को देखकर, बाहर की वस्तुओं को देखकर उन पे मोहित होता है। भावदीप का ग्रंथ पढ़ा है, गुरुदेव श्री ने बहुत अद्भुत महिमा गाई है भावदीप का की। पंडित कासलीवाल जी, अध्यात्म की इतनी गहराइयां हैं, इतनी गहराइयां कि यहां से बाहर जाने की इच्छा ना हो, उसमें ऐसा लिखा, पुद्गल में भेद बुद्धि मिथ्यात्व का कारण है। भावदीपका में भाई जी, क्या फिर से बोलिए आप, पुद्गल में भेद बुद्धि मिथ्यात्व का कारण है। अर्थ समझ में नहीं आया होगा, ये सोना, ये चांदी, ये अच्छा पुद्गल, ये बुरा पुद्गल, ये सुखकारी पुद्गल, ये दुखकारी पुद्गल, इसको ग्रहण करना है, इसको छोड़ना है, ऐसी सोच, ऐसी थिंकिंग, ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा विचार, ये मिथ्यात्व का कारण है। ये अच्छा, ये बुरा, सच पूछा जाए तो पूरा विश्व ज्ञानी को राग का ढेर नजर आता है। राग का ढेर तो नजर आता है, लेकिन द्वेष नहीं है उससे, उसे द्वेष नहीं है। हम अध्यात्म के नाम पे द्वेषी हो गए, आत्मा की चर्चा को आत्मा का अनुभव समझते हैं और बाहर की द्वेष को भेद विज्ञान समझते हैं, जबकि जिसको भिन्न जाना उसमें जीव तटस्थ हो जाता है, मेरा जगत से कोई संबंध नहीं। फिर से सुनना, विरक्त होना अलग चीज है और विरक्त होना अलग चीज है और निराश होना अलग चीज है। पर में सुख नहीं मिला तो अज्ञानी विरक्त नहीं होता, दुखी हो जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है। लो पर मुझे सुख नहीं देता, मैं क्या करूं, और ज्ञानी पर सुख दे सकता नहीं, ऐसा जानकर स्वरूप में समा जाता है। चर्चा बहुत है, इसका जो मूल विषय है वो शायद कल आ जाएगा बाद में, इसमें नहीं, कल हो सकता है ना भी आए तो परसों तो आ ही जाएगा। अभी इसमें दो पहरा हो गए, मैं इसका थोड़े समरी कर देता हूं, दो बात हो गई। स्टार्टिंग में रहस्यपूर्ण चिट्ठी की भूमिका टोडरमल जी ने बनाई और तत्व ज्ञानी की महिमा गाई कि जो चैतन्य तत्व की बात को प्रसन्नता पूर्वक सुनता है। मैं तो कहता हूं अभी मुंबई में बारिश ही बारिश हो रही है, ऐसी होती रहे ऑफिस खुले ही नहीं आपकी। हाँ, और घर घर में बैठ के यही चर्चा करो, घर जाके अपने बच्चों को पास में बैठा लो आराम से और यही तत्व चर्चा करो, तो कैसा शुभ लक्षण लगे, कितना आनंद आए, गजब का। तो तत्व ज्ञान की महिमा गाई, दूसरे पहरा में जीव की दशा बताई है जो आज हमने चर्चा की है कि अनादि से जीव पदार्थ मिथ्या दृष्टि है, माने पर्याय की चर्चा की है। अब आगे इसमें कहेंगे कि उसको जो तत्व श्रद्धान होता है वो किस रूप होता है और तत्व श्रद्धान होने पर भी ज्ञानी को ज्ञानी कैसे हुआ
और सम्यक दर्शन होने के बाद भी वो विवाह क्यों करता है? ये प्रश्नों के उत्तर हैं इसमें। शिष्य को, सब लोगों को यही वो है, इन मुमुक्षुओं का धर्म अच्छा है और सम्यक दर्शन भी हो रहा है, लड्डू भी खा रहे हैं। ये प्रश्न का उत्तर टोडरमल जी ने आगे के पैरा में दिया है। समझ में नहीं आ रहा इनका कैसा सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन भी है और युद्ध लड़ने भी जा रहे हैं। मैं ये वाला पहरा आपको कम से कम 20 तीर्थंकरों के उदाहरणों से दूंगा अलग अलग। आदिनाथ को भी किस जाति का औदयिक भाव आया, भरत जी को भी किस जाति का औदयिक भाव आया, सुनना ध्यान पूर्वक। सम्यक दृष्टि का औदयिक भाव आदर्श नहीं होता, सम्यक दृष्टि का औदयिक भाव आदर्श नहीं होता, तथापि उस औदयिक भाव को कोई रोक भी नहीं सकता। उसको आना है तो वो आएगा। तो ज्ञानी जीव को किस तरह से स्वसंवेदन होता है और फिर वो सविकल्प में आता है तो किस तरह से कैसे कैसे परिणाम उसके हो सकते हैं, इसकी चर्चा अपन कल के पीरियड में करेंगे। और जो संध्या काल का विषय चल रहा है वो स्पेशली युवाओं के लिए, आज का विषय बहुत जिनवाणी के अनुसार आएगा, जिसे अपन निकांक्षित अंग कहते हैं, बहुत ही वैराग्य भरा है कि हमको कभी धर्म करके भोगों की वांछा नहीं करनी चाहिए। और उसमें पुण्य पाप का विषय भी आएगा, विलंब हो गया क्षमा चाहता हूं।
रात्रि जय जिनेन्द्र। रात्रि ना समय में फेरफार छे तो दरेक नोंध लेवा विनंती छे। रात्रे 7:30 7:30 जिनेन्द्र भक्ति तथा आरती 7:30 जिनेन्द्र भक्ति तथा आरती 8:15 पूज्य गुरुदेव पूज्य बेन सिंह विडियो तत्व चर्चा 8:15 और 8:15 शास्त्र स्वाध्याय जे सम्यक दृष्टिना 8 अंग छे एना पर संजय जी शास्त्री नु 8:15 ए प्रमाणे कार्यक्रम छे रहेशे। तो दरेके नोंध लेवा विनंती छे। संसार सार